थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उपाध्याय नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। श्रोताओ, हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक ज्ञान मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए अपने मित्रों के साथ बैठे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से ओबद्याह नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब ने देखा कि ओबद्याह का अर्थ क्या है, यहोवा का सेवक, जो एक छोटा सा भविष्यद्वक्ता है। और तब हमने यह भी देखा कि एसाव और याकूब, जो दो भाई हैं और दो राष्ट्र उनसे उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर एसाव से घृणा करता है। और वह क्यों उससे घृणा करता है, इसके बारे में आज हम अपने अध्ययन में देखेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और अपने जीवित और सामर्थी परमेश्वर से सहायता मांगे, ताकि आज के अध्ययन के द्वारा हम इन गंभीर बातों को अपने जीवन में सीख सकें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके पवित्र चरणों पर आकर आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। यद्यपि कि हम एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, परंतु आपने हमें यह अवसर दिया है कि हम दूर दराज में रहकर रेडियो के माध्यम से आपके वचन को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। इस घड़ी जब हम ओबद्याह की पुस्तक से आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के आत्मिक आंखों को, उनके कानों और हृदय को, विचारों को खोल दें, ताकि जब वे आपके वचन में से सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में अधिकाई से कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, ताकि प्रत्येक जीवन इस बात को समझ सके कि आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमारी जरूरतों को समझते हैं। हाँ प्रभु, हमारे यही आपसे प्रार्थना है। और हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय अपने जीवन में निराश, परेशान, चिंता और तनाव में हैं। प्रभु जी, आप उन्हें भी शांति प्रदान कीजिए। आज के वचन पर अपनी आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम ओबद्याह की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। यद्यपि एदोम, जो एसाव से उत्पन्न एक जाति थी, रिश्ते में ये इसराइली की भाई लगती थी, परंतु वे सदा ही इसराइल के साथ अर्थात याकूब के साथ बैर निभाते आए थे। वे आक्रमणकारियों के साथ मिलकर इसराइल के विरोध में खड़े होते थे, उन्हें लूटते थे, और उन पर जब संकट आता था तो वे आनंद मनाते थे। जैसा कि आज बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों के बीच में जब किसी प्रकार की समस्याएं आते देखते हैं तो वे खुश होते हैं, सोचते हैं कि अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। यहां पर एसाव के जीवन में भी कुछ ऐसी बातों को हम देख रहे हैं। तब परमेश्वर कहता है, जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीनकर ले गए और पराए लोगों ने उसके फाटकों में घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति में और विपत्ति के दिन में उसके फाटक में घुसता, उसकी धन संपत्ति पर हाथ डालता? अतः परमेश्वर कहता है कि तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है, मैं तुझे वहीं से नीचे गिराऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। मेरे मित्रों, दोनों भाई एक एक जाति बन गए थे। याकूब इसराइल बना और एसाव एदोम बना। इसराइल को परमेश्वर ने सदियों तक सामर्थ्य रूप से काम में लिया। इसराइल में मूसा, यहोशू, शामुएल, दाऊद, हिजकिया, नहमिया, एज्रा जैसे लोग उत्पन्न हुए थे, परंतु एसाव से उत्पन्न जाति अभक्त जाति थी। एदोम ने परमेश्वर का तिरस्कार किया था। उसमें ऐसी क्या बात थी कि परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना और उस जाति से घृणा की? मेरे मित्रों, आइए हम पढ़ते हैं ओबद्याह की पुस्तक एक अध्याय के दो पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उठो हम उससे लड़ने को उठें, मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। मेरे मित्रों, अब इस पुस्तक में देखेंगे कि यह बड़ी जाति तुच्छ ठहरेगी। यह ओबद्याह की भविष्यवाणी है जो भविष्य की ओर संकेत करती है, परंतु आज यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। एदोम का महापाप क्या था जिसके कारण उसका पतन हुआ, इस पर हम विचार करेंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे ओबद्याह की पुस्तक एक अध्याय उसके तीन पद, यहां पर लिखा है, हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है, तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। यहां पर आप ध्यान दीजिए, लिखा है कि तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। एदोम को परमेश्वर ने अप्रिय क्यों जाना? उसके घमंड के कारण। यह सुनते ही आप आश्चर्य के साथ कहेंगे, बस केवल घमंड के कारण? क्या घमंड ऐसा भयानक होता है? मेरे मित्रों, मैं आपको उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं कि पाप के कारण आज अव्यवस्था क्यों है। अब मान लीजिए कि एक शराब पीने वाला व्यक्ति सीमा पार कर जाता है और मैं आपसे विचार विमर्श करता हूं कि कलीसिया उसके साथ क्या करे। आप निश्चय ही सुझाव देंगे कि उसे कलीसिया से बाहर कर देना चाहिए और मैं आपकी बात मान लेता हूं। फिर एक और सदस्य है जिसे सुपर बाजार में चोरी करते हुए पुलिस ने पकड़ लिया है। वह कलीसिया का पदाधिकारी है। आप कहते हैं उसे भी कलीसिया से बाहर कर देना चाहिए और उसे अनुशासन सिखाना चाहिए। मैं आपकी बात मान लेता हूं। अब मैं आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्ति का नाम रखता हूं जो बहुत ही घमंडी है। आप उसके विषय यह नहीं कहेंगे कि उसे कलीसिया से निकाल देना चाहिए। आप में से कुछ मनुष्य कहेंगे, हमारे विचार में पास्टर को उसे समझाना चाहिए कि घमंड करना अच्छा नहीं है। घमंड करना तो शराब पीने, चोरी करने, झूठ बोलने के समान नहीं है। कम से कम वह दिखाता तो नहीं है। यदि मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर की दृष्टि में घमंड करना शराब पीने से अधिक बुरा है तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। मेरे प्रियो, घमंड करना शराब पीने से अधिक बुरा है क्योंकि यह हमारे जीवन के मध्य स्थित है। निसंदेह वचन शराब के विरुद्ध बहुत कुछ करता है। परमेश्वर शराब पीना स्वीकार नहीं करता है। शराब के कारण ही इसराइल का पतन हुआ था। बेबीलोन, सिकंदर महान का साम्राज्य, रोम आदि सब महान राष्ट्रों का पतन शराब के कारण ही हुआ था और आज भी शराब किसी देश का नाश कर सकती है। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में घमंड इससे कहीं अधिक बुरा है। यह परमेश्वर आधारित हमारे जीवन को छलनी बना देता है। अतः यहां घमंड के संबंध में परमेश्वर का विचार प्रस्तुत किया गया है। धर्मशास्त्र इसे सबसे अधिक बुरा मानता है। यदि एदोम की भीतरी दशा ऐसी है तो परमेश्वर सच कहता है कि उसने एसाव को अप्रिय जाना है। मेरे मित्रों, नीति वचन की पुस्तक 6 अध्याय उसके 16 से 19 पद में लेखक कहता है कि परमेश्वर को 7 बातों से घृणा है। तो आइए हम देखते हैं कि ये 7 बातें क्या हैं। पहला, घमंड। जी हां, पहली बात से यहां पर हम देखते हैं घमंड। और दूसरा, झूठ बोलने वाली जीभ। तीसरा, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। और तब चौथा दुष्टता के विचार रखने वाला मन और पांचवा कुकर्म करने वाले लोग और तब छठा झूठा गवाह और अंतिम जो सातवीं बात है भाइयों में फूट डालने वाला। मेरे प्रियो देखिए परमेश्वर की घृणा सूची में सबसे पहला स्थान घमंड का है। घमंड से चढ़ी आंखें। आराधना में एक दीन जन ने पाप किया और एक मनुष्य आकर उसे तिरस्कार भरी दृष्टि से देखता है तो वह शराब पीने से अधिक बुरा पाप है। मैं शराब पीने का पक्ष नहीं ले रहा परंतु कहता हूं कि शराब पीना बुरा है तो घमंड करना कहीं अधिक बुरा है। परमेश्वर कहता है कि वह घमंडी का विरोध करता है, वह दीन का पक्ष लेता है। नीति वचन की पुस्तक 8:13 में लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से मैं बैर रखती हूं। और हम देखते हैं पहला यूहन्ना की पत्री 2:16 में लिखा है, घमंड वह पिता की ओर से नहीं है। घमंड कहां से आता है? यदि शैतान से कुछ मिलता है तो वह यही है, अर्थात घमंड। मेरे मित्रों, आज अनेक विश्वासियों में जाति का घमंड, अपने पद का घमंड, अनुग्रह का घमंड, पैसों का घमंड छिपा हुआ है। उन्हें तो अनुग्रह द्वारा उद्धार पाने का भी घमंड है। उद्धार पाना घमंड या वर्ग करने की बात नहीं है, यह तो परमेश्वर के महिमान्वयन के लिए है या आपको दीन बनाने के लिए है। आपको तो लज्जा आना चाहिए कि आप अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, क्योंकि आप ऐसे दयनीय पापी हैं। काश मेरे पास कुछ होता कि मैं परमेश्वर को उद्धार के बदले दे पाता, परंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिसे मैं उसे दे पाऊं। इसी कारण तो मैं अनुग्रह के द्वारा बचाया गया हूं। अतः मैं इस गर्व को नहीं कर सकता, क्योंकि यह मेरा नहीं परमेश्वर का दिया हुआ है, उसका अनुग्रह है। आज अनेक जन गर्व करते हैं, घमंड करते हैं कि वे कभी पापी नहीं थे। परमेश्वर केवल दीन जन को अनुभव प्रदान करता है। फिलिपी के विश्वासियों को पौलुस ने लिखा था कि उनमें भी वही मन हो जो प्रभु यीशु में था। फिलिपियों के पत्री 2:5 में प्रभु यीशु का मन कैसा था दिया गया है, दीन। जी हां, प्रभु यीशु का मन दीन था। मत्ती रचित सुसमाचार 16:29 में प्रभु यीशु स्वयं कहता है कि वह मन का दीन है। घमंड अनेक विश्वासियों की गवाही पर बुरा प्रभाव डालता है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, और वे परमेश्वर के लिए किसी काम के नहीं रह जाते हैं। वे दिखावा करते हैं परंतु जानते नहीं कि वे केवल फूस का निर्माण कर रहे हैं। वे प्रभु यीशु के नींव पर निर्माण नहीं कर रहे हैं जो सोना चांदी और मूल्यवान पत्थर का निर्माण है। आज अनेक विश्वासी पूर्ण रूपेण धाराशायी हो गए हैं। मेरे मित्रों, घमंड तो वास्तव में शैतान का था। उसने कहा यशायाह नबी की पुस्तक 14:14 में, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। राजा नबूकदनेस्सर के मानसिक असंतुलन का कारण भी घमंड ही था। वह भोर के तारे के समान अपने राज्य महल में अकड़ कर चल रहा था और उसने मन में कहा, दानियल नबी की पुस्तक 4:30 में, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। और फिर क्या हुआ, दानियल नबी की पुस्तक 4:31-32 में, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा। मेरे प्रियो, यह कोई संयोग नहीं था, यह एक दिन की बात नहीं थी। आज की मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे स्मृति लोप कहते हैं। वह भूल गया कि वह कौन था और वह पशुओं का सा व्यवहार करने लगा। क्यों? क्योंकि घमंड मनुष्य को पशु के समान बना देता है। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को पशु के समान बना दिया था। घमंड क्या है? घमंड परमेश्वर से अलग जीवन जीने का दावा करता है। ओबद्याह की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि एदोम जाति को घमंड था जैसा एसाव को घमंड था, जब उसने अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना था। इसहाक के घर में भोजन की कमी नहीं थी, परंतु वह याकूब की दाल खाने की लालसा कर रहा था और अपने पहलौठे के अधिकार से अधिक उसे दाल की लालसा थी। पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जानने में उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना। अब उससे एक बड़ी जाति उत्पन्न हुई और वह भी परमेश्वर से अलग जीवन जीने का दावा कर रही थी। लिखा है, तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? वे पहाड़ों की ऊंचाई पर चट्टानों में बनाए गए नगर में रहते थे। वह नगर पेत्रा चट्टानों को काटकर बनाया गया था और उसके प्रवेश मार्ग बहुत छोटे थे। वहां घुड़सवार को किसी भी रीति से प्रवेश करना कठिन था, अर्थात वहां घुड़सवार को भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाने में कठिनाई होती थी। अतः वह एक सुरक्षित नगर था। उस युग में अनेक देशों ने अपना सोना चांदी वहां सुरक्षित रखा हुआ था। उसके विचार में वह नगर अजेय था। उन्हें अपनी सुरक्षा पर इतना विश्वास था कि उन्होंने परमेश्वर से संबंध तोड़ दिया था। उन्होंने परमेश्वर से विद्रोह किया था। अब ऐसी स्थिति में परमेश्वर क्या करेगा? मेरे प्रियो, आप जरा विचार कीजिए। परमेश्वर आपको प्रतिदिन की भोजन देता है, रहने के लिए घर देता है, पहनने के लिए वस्त्र देता है, सब कुछ उसका है, ये जीवन उसका है। लेकिन आप उसी के विरोध में जब कार्य करते हैं तो परमेश्वर आपके प्रति क्या करेगा? जी हाँ, आप प्रतिदिन झूठ बोलते हैं, अपने जीवन में आप चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं और अनेक प्रकार की बुराइयों में आप लिप्त होते जाते हैं, जिससे परमेश्वर घृणा करता है, जिससे परमेश्वर दूर रहने के लिए आपको आगाह करता है, परंतु आप बार बार उन्हीं कार्यों को करते हैं। जी हाँ, यह एसाव की बात नहीं है, एदोमी की बात नहीं है, परंतु आज आपके लिए और मेरे लिए भी है। उस समय एदोम जाति ने, एसाव के वंशज ने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, नहीं माना। क्या आज आप परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की बातों को सुन करके उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? मेरे प्रियो, घमंड एक दिन की बात नहीं है। घमंड जब हमारे अंदर आ जाता है तो धीरे धीरे हमें विनाश के गढ़े की ओर ले चलता है। ये घटना एक दिन की बात नहीं थी, सिर्फ लाल दाल की बात थी। उसने अपने पहलौठे को छोड़ दिया, अपने छोटे भाई को बेच दिया, उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना। और सिर्फ उसी दिन नहीं, परंतु जैसे जैसे वह जीवन में आगे बढ़ता गया, एक देश एक राष्ट्र के रूप में उसकी जाति बनी। और तब भी हम देखते हैं कि कोई परमेश्वर की ओर नहीं फिरा, कोई भी दयावंत नहीं हुआ, दीन नहीं हुआ, परंतु उस प्रकार के जीवन में वो आगे की ओर बढ़ता चला गया। आज परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी देखना चाहता है कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। मेरे मित्रों, आप जरा विचार कीजिए, अपने जीवन की ओर झांकते हुए देखते हुए कि आपके जीवन को देखकर परमेश्वर ऐसी स्थिति में क्या करेगा, उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे आपको छोड़ देना चाहिए या आपको उसे दंड देना चाहिए? इस बात को भी ध्यान में रखें कि परमेश्वर न्यायी है। जी हाँ, वह न्यायी परमेश्वर है, आपसे प्यार करता है और आपकी चिंता करता है। वह चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं का पालन करें, परंतु जब आप उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, घमंड करके अपने जीवन को विनाश की ओर ले जाते हैं, तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है सिवाय इसके कि वह आपसे घृणा करे। ये सच बात है कि परमेश्वर हमसे घृणा नहीं करता, वह चाहता है कि हम उसके प्रेम में बढ़ते चले जाएं, बलवंत होते चले जाएं। बार बार वह हमारे जीवन में मौका देता है, आज वह आपके जीवन में भी मौका दे रहा है। क्या आप उस महान परमेश्वर की ओर अपने मनों को फिराएंगे? यदि हाँ, तो आज ही आप अपने जीवन में परमेश्वर को आने दें, उसे कार्य करने दें, ताकि वह आपको घमंडी नहीं परंतु दीन नम्र व्यक्ति बना दे, आपके जीवन में प्रेम को उंडेल दे, ताकि आप एक सज्जन व्यक्ति, एक विश्वासी के रूप में अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए। मेरे प्रियो, आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे, ताकि आप दीन और नम्र और अनुग्रहकारी व्यक्ति बनने पाए। प्रभु आप सबके साथ हो।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा।